جزاكم الله خيرا، بہت شکریہ. سلام الله عليكم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله خاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لا سيما مولانا ومقتدانا الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولا الخصوص مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله. قال مولانا ومقتدانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام: شيعتنا هم الذين يتبعون آثارنا ويطيعون في جميع أوامرنا ونواهينا، ومن خالفنا في كثير مما فرض الله فليس من شيعتنا. آپ سب کو، بہنوں بھائیوں کو، ہمارے برادر عزیز ہوسٹ جو کر رہے ہیں ان کو سب کی خدمت میں امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہدیے تبریک پیش کرتا ہوں، اور سب مل کر پیشگاہ اور درگاہ مقدس صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمانہ کے حضور ہدیے تبریک پیش کرتے ہیں. آپ کے والد بزرگوار کی ولادت کی مناسبت سے ماشاءاللہ میں سن رہا تھا بہت اچھے اور بہترین اشعار جو ہے ہمارے بھائیوں نے جو ہے پڑھے، اور قصیدے منقبت. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صدقے میں اجر عظیم فی الدنیا والآخرہ عنایت کرے، اور ان برادران کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کی جو بھی حاجات ہیں اپنی درگاہ میں قبول و مقبول کرے انشاءاللہ. میں نے آغاز کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک فرمان سے کہ جس کی طرف انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تھوڑا سا جو ہے مختصراً کچھ نکات جو عرض کرنے ہیں، اور اس کے بعد اصل موضوع کی طرف بڑھیں گے. گیارہویں امام کی ولادت با سعادت 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری قمری، جو کہ ہمارے ایڈی جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے 846 846 بنتا ہے، مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. اور اسی طرح آپ کی شہادت کی جو موسٹ پاپولر تاریخ ہے وہ 28 ربیع الاول سن 260 ہجری ہے. اس حساب سے جو آپ کی عمر مبارک ہے وہ تقریباً 28 ایئرز بنتی ہے، اور اس 28 میں سے تقریباً 6 سال وہ عرصہ ہے جس میں آفیشیلی طور پر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد جو ہے امامت بنوان امام وقت اور امام دوراں کے طور پر آفیشیلی آپ نے گزارے ہیں. آپ کی اولاد کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، اور بعض مورخین نے، مغرضین نے بلکہ یہ کہوں، کوشش کی کہ آپ کے لیے کسی بھی اولاد کے حوالے سے کہیں کہ کوئی اولاد ہے ہی نہیں، جیسے کہ بعض مورخین نے کوشش کی. لیکن جو موسٹ پاپولر، مشہور اور بہت زیادہ جس چیز کو کوٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے، انکلوڈنگ امام صاحب العصر والزمان کے. البتہ اور بھی اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں. ظاہر ہے آپ بہت ہی عمر کے اعتبار سے ظاہری طور پر چھوٹے تھے جب آپ کے والد بزرگوار کو مدینے سے جبری طور پر بائی فورس ہجرت کرا کے سامرہ میں، یا جو ہے اسکر میں لا کے، وہاں پر بغداد کے کنارے میں وہاں پر لا کے جو ایک فوجی چھاونی تھی، ایک کہہ سکتے ہیں کہ عسکری جگہ تھی، एक आर्मी कैंप या आर्मी हेडक्वार्टर था, जहां पर फौजी जो इदारा होता है, आर्मी बेस होती है और कमांड वहां पर रहती थी, वहां पर आपको बिल्कुल उसके करीब लाके वहां पर रखा गया। और ये जो फौजी इदारा था, ये मोस्टली जो आर्मी कमांडर्स थे वो अरब्स नहीं थे, बल्कि टर्किश और बर्बर थे, जो कि हमारी साउथ एशियाई, जो वस्त एशियाई जो रियासतें हैं सऊदी यूनियन से टूटने के बाद, जहां से हलाकू और दीगर लोगों का ताल्लुक भी है, इन्हीं स्टेट्स इन एरियाज की तरफ से बर्बर अकवाम अगरचि काफी फैली हुई है, यहाँ से जो है ताल्लुक रखते थे। और अब्बासी जो खुलाफा थे वो इसकी वजह से खुद भी काफी डरे और सहमे रहते थे, कि क्योंकि आर्मी की जो कमांड है वो बर्बर कमांडरों और तुर्क टर्किश कमांडरों के पास है, लिहाजा वो डरते थे कि कहीं पर भी कोई आर्मी क्यों ना हो जाए, या जो है इसलिए वो हमेशा उनकी रजाइयत और उनको खुश देखना चाहते थे। जिस वक्त इमाम को हिजरत करना पड़ा, तो उस वक्त जाहरी जो इमाम की उम्र शरीफ थी वो तकरीबन 4 साल के करीब कह सकते हैं, जब जबरी तौर पर इमाम नकी अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी, नकी हादी अलैहिस्सलाम आपके वालिद बुजुर्गवार को, तो उस वक्त 4 साल के थे सिर्फ। और इस आर्मी हेडक्वार्टर या फौजी छावनी के अंदर जो है दोनों आइमाए ताहरीन अलैहिस्सलाम को एक तकरीबन हाउस अरेस्ट टाइप की जो एक सिचुएशन थी उस जमाने के हिसाब से, उस तरीके से जो है आपको वहां पर रखा गया। यहीं पर आप जो है जाहिरी तौर पर पले बड़े और बुजुर्ग हुए, बड़ी उम्र में आ गए। तीन मेजर अब्बासी खुलाफा हैं जो आपकी दौरे इमामत के अंदर मौजूद रहे हैं, और कई बार आपको कुछ टाइम्स के लिए, जो कि सबसे ज्यादा जो ड्यूरेशन है वो 1 साल की है, कि आपको जेल में भी डाला गया, प्रिजन में डाला गया। ये तकरीबन हिजरी के ईयर्स में बताया है कि 255 हिजरी में तकरीबन 1 साल के बाद जो है फिर जो है आपको छोड़ा गया, क्योंकि बहुत सारी मूवमेंट्स उस वक्त चल रही होती थी, और ये जो मूवमेंट चलाने वाले लोग थे ये खुद को अलवी कहते थे। अलवी एक शिया होने का टाइटल था उस वक्त, जिसे कि आज लफ्ज शिया है, या ऑलमोस्ट और भी टर्मिनोलॉजीज अब आ रही है, मोमिनीन का लफ्ज आ रहा है, और भी तो मवालियान हैदर कर्रार, मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स यूज होने लगे हैं। तो वो ये कहते थे, उनमें से चार तकरीबन तहरीकें हम कह सकते हैं, तो उनमें से जो साहेब जंज की तहरीक है उसको तो आपने कैटेगोरिकली आपने डिनाई किया कि इनका कोई हमसे अलवी मूवमेंट से ताल्लुक नहीं है, बाकी जो मूवमेंट्स थी उनको आपने मुजम्मत नहीं की उन मूवमेंट्स की, लेकिन वो बराह रास्त आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे कि आप लीड कर रहे हो, लेकिन इन द सेम टाइम आपकी हमदर्दियां, हम कह सकते हैं आज की टर्मिनोलॉजी में, आपकी हमदर्दियां उन मूवमेंट्स के साथ थी, और उन मूवमेंट्स के बारे में आप पॉजिटिव कमेंट्स करते थे और पॉजिटिवली उसको लेते थे, अगरचि खुद आप उस वक्त मसलहत नहीं समझते थे कि जो है मूवमेंट किया, यानी एक मूवमेंट को लीड करें या एक मूवमेंट जो है स्टार्ट करें, इसलिए कि इस वक्त इस तरह की एनवायरनमेंट इस वक्त मौजूद नहीं थी और ग्राउंड भी कंप्लीटली तैयार नहीं था। आपको सेकंड टाइम जेल में डाला जाता है 5 साल के बाद, तकरीबन 260 हिजरी में, और तकरीबन एक आध महीना इमाम को जेल में रहना पड़ता है और फिर रहाई मिलती है। मैं ये बातें इसलिए कोट कर रहा हूँ, 6 ईयर टोटल आपकी इमामत की ड्यूरेशन है, जिसमें से 1 साल 1 महीना आप जेल में रहते हैं, तो अब बाकी जो टाइम रहता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, और जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। अब देखें कि कारे इमामत को, इमामत के उमूर को किस तरह जो है इमाम अली मकाम इन उमूर को इस ड्यूरेशन के दरमियान लेके चलते हैं और कैसे ले जो है आगे बढ़ते हैं। सबसे एक बड़ा जो इशू था इमाम के सामने, अलबत्ता इसकी डिफरेंट टाइप की इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं उलमा के दरमियान, एक बड़ा जो मसला उस वक्त था वो इमाम और मामूम के दरमियान, इमाम और उम्मत के दरमियान राबिते का मसला था। इसलिए कि आपसे आप एक जबरी तहते नजरी में थे, हाउस अरेस्ट किसी सिचुएशन का आप सामना कर रहे थे, और इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोगों का मिलना जुलना ये एक पॉसिबल चीज नहीं थी। अलबत्ता ये एक तरफ ये मसला ठीक है कि इस तरह रहा, दूसरी तरफ ये चीज एक तरह से ग्राउंड भी बन रही थी, एक जो साइकी थी, क्योंकि पीछे आपके वालिद बुजुर्गवार को भी 10वें इमाम के साथ भी यही रवैया तकरीबन रखा गया था, तो एक तरह से ग्राउंड बन रहा था कि अहले तशीह और सही मुसलमान अपने पैरों पे खड़े हो सक होना हो रहे थे, मजहबी एतबार से, फिक्री एतबार से, शरी एतबार से और दीगर हवालों से, अपने सियासी एतबार से, समाजी एतबार से अपने पैरों पे खड़े होने की सलाहियत हासिल कर रहे थे। इस एक जो दुश्मन की चाल थी, इस दुश्मन की चाल को, यानी जिसको हम कहते हैं थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेना, तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो रही थी ये चीजें इमाम की हिदायत की वजह से। तो लोग एक तरह से प्रिपेयर हो रहे थे एक ऐसे टाइम के लिए कि जब टोटली उनका कनेक्शन इमाम के साथ जाहरी तौर पर कट जाएगा, कोई खतूत का सिलसिला नहीं रहेगा, कोई डेलीगेशंस नहीं जा सकता है, कोई मैसेज डायरेक्टली आ नहीं सकता है, कोई आपका आपकी तरफ से डायरेक्टली अपॉइंट किया हुआ कोई रिप्रेजेंटेटिव आपका नहीं है कि जिसके बारे में टाइम टू टाइम आपकी तरफ से लेटर आ रहे हों, आपकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हों, लोग मैसेजेस दे रहे हों, और हर क्वेश्चन जो उनके सामने आता है या जो सिचुएशन क्रिएट होती है उस सिचुएशन में डायरेक्ट इमाम से जो है कंसर्न करें, इमाम को लेटर लिखें, इमाम से कोई छुप छुपा के इधर उधर करके मुख्तलिफ तरीकों से कोई आंसर इमाम से हासिल किया जाए, ये सारी सिचुएशन खत्म होने वाली थी और असर गैबत में लोगों ने एंट्री करनी थी, तो उसके लिए एक तरह की प्रिपरेशन हो रही थी, ये ग्राउंड हमवार हो रही थी, जमीन हमवार हो रही थी असर गैबत के लिए, जो आज कहा जाता है असर जहूर के लिए जमीन हमवार किया जाए। तो आप देखें असर गैबत के लिए आइम्मा ने बाकायदा जमीन हमवार किया था, पैगम्बर खुदा से कुरान मजीद की आयात के जरिए, हजरत ईसा अलैहि सलाम के दौर में, उससे पहले दीगर नबियों के दौर में ये बात जहन में डाली जाती रही जनरेशन टू जनरेशन कि भाई एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत अल्लाह की जानिब से आने वाली है जिसने अल्लाह ताला के दीन को पूरी दुनिया के ऊपर क्या कहते हैं नाफिज करना है, और एक इंसाफ पर मबनी इलाही निजाम बनाना है, हर किस्म का एक सिस्टम जो है वो इलाही कुरान और क्या कहते हैं अहले बैत और पैगंबरों की अहादीस और खुदा के हुक्म की रोशनी में तश्कील पाएगा। तो ये तो था, लेकिन जाहिर है कि हम लोग, हमारी मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है और चीजें बीच में मिसिंग हो जाती हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस सिलसिले में एक अवेयरनेस रखते हैं। अभी की सिचुएशन से हम उस वक्त की सिचुएशन को समझ सकते हैं। आज देखे कितने लोग हैं जो प्रिपेयर हैं या खुद प्रिपेयर हो रहे हैं, सोसाइटी को कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड हमवार कर रहे हैं इमाम के जहूर के लिए। कितने लोग हैं जो इसमें एक अनथक मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स इसके ऊपर कर रहे हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको अगर दुनिया में अगर आप देखें तो। आप अंदाजा लगा लें कि सूरत हाल इतनी कठिन थी, जब हम कहते हैं इमाम से मुलाकात और ये चीजें, आजादी नहीं थी इमाम को, इतनी फ्री नहीं थे, फ्रीडम नहीं था इमाम के पास की मुलाकात के, लोग भी नहीं, हर हफ्ते एवरी वीक इमाम को सोमवार के दिन और जुमरात के दिन इमाम को दारुल खिलाफा में जाकर अपनी सामर्रा में होने अपनी प्रेजेंटेशन की इंदराज कराना था, हमारी जबान में कितना हाजिरी लगवाना, यानी बाज होते हैं ना जैसे जेलू में कहते हैं कि भाई आप ठीक है हम आपको बेल देते हैं, आप बेल पे रहा हो जाएंगे, लेकिन एवरी वीक या एवरी डे या एवरी इतने दिन के बाद आप थाने में रिपोर्ट करेंगे कि भाई मैं सिटी के अंदर हूं, क्योंकि सिटी आउट ऑफ सिटी आप नहीं जा सकते। तो इस तरह की सिचुएशन इमाम के साथ थी कि हफ्ते में 2 दिन इमाम ने सामर्रा में दारुल खिलाफा में जाना था, वहां जाके बताना था कि भाई देखें मैं इधर ही मौजूद हूँ सामर्रा के अंदर, मैं कहें इधर उधर नहीं गया। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत से वाकयात मिलते हैं इसके अंदर, क्योंकि लोगों को पता था कि इमाम ने वीक में 2 दिन जो है इमाम ने जाना है जो खलीफा के मुतालिका जो डिपार्टमेंट है या जो दारुल खिलाफा का हिस्सा है, उसमें जाके इमाम ने अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंट होने के बारे में बताना है कि सामर्रा में मौजूद हैं। बहुत से लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे जियारत के लिए। एक मशहूर वाकया है अली इब्ने जाफर नाम के एक शख्स का, जो कि फॉलोअर था इमाम का, शिया था। वो पहले से सोचने लगा कि भाई आज चले इमाम की दारुल खिलाफा जाने का दिन है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि रास्ते में खड़ा हो जाता हूँ और इमाम से कुछ पूछूंगा भी और सलाम भी करूंगा, इमाम की जियारत भी होगी। अब ये पता नहीं कि तारीख में कहे कि किसी से बात की थी उसने या खुद सोचा था, बहरहाल जो भी था, इससे पहले कि वो दिन आ जाता, फर्ज करें जुमरात का दिन आ जाता, उससे एक दो दिन पहले एक लेटर आता है इमाम की तरफ से, जिसको हम तौकी कहते हैं। तौकी यानी सिग्नेचर, तौकी कहते हैं सिग्नेचर्स को, आज भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी, मॉडर्न अरबी में भी। तौकी पहुंची है, तौकी यानी इमाम के हैंड, हाथ से लिखा हुआ या इमाम का सिग्नेचर्स के साथ। अब ये इसका भी मैं जिक्र करूंगा कि इमाम के सिग्नेचर और हाथ से लिखी हुई की फिलोसफी क्या है। तो वो लिखा हुआ एक लेटर आया उसके पास, और उस लेटर में जो तहरीर थी इबारत वो ये थी कि ला युसल्लिमन्ना अलैया अहदन वला युशीरु इलैया बियदिही वला युमा फइन्नका ला तुमिनूना अला अनफुसिकुम। यानी इमाम आली मकाम क्लियरली उसको पैगाम दे रहे हैं, देखो मैं जब तुम्हारे सामने से गुजरूं तो सलाम मत करना, अंदाजा लगा लीजिए, ला युसल्लिमन्ना अलैया, मुझे सलाम मत करना, अहदन, कोई मुझे सलाम ना करे, कोई मुझे सलाम न करना, इशारा भी न करना, वला युशीरु इलैया बियदिही, हाथ से इशारा भी न करना, मतलब एक दूसरे को ऐसे इशारा ना करना कि देखो इमाम तशरीफ ला रहे हो, देखो इमाम आ रहे, इस तरह नहीं करना, यानी नॉर्मल रहना, यानी यूजुअल तरीके से रहना कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई पता नहीं है। फइन्नकुम ला तुमिनून अला अनफुसिकुम, कह रहे हैं कि इसलिए कि तुम्हारी, तुम लोगों की जान खतरे में है, तुम लोग जो है अपनी जान जो है खतरे में मत डालो, लिहाजा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो थी वो किस किस्म की है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक हमारे लिए मैसेजेस क्या हैं इसके अंदर, देखें हम बाज अवकात मुमकिन है कि इस तरह से की या इससे मिलती जुलती सिचुएशन को फेस करें, खासकर जिन ममालिक से हम आए हैं उसके बैकग्राउंड में, इंडिया में भी जो इस वक्त सिचुएशन है मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर, पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल बनती रहती है अहले तशी को लेकर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिचुएशन में हम कैसे जो है क्या पॉलिसीज अपनाएं। अलबत्ता ये नहीं कि सिर्फ इसी एक को, पूरे आइमा की सीरत को देखना है, लेकिन एक चीज जो है ये भी बन सकती है, राजदारी करना, यानी इससे जो मैसेज मिलता है वो उसको यूं ले लें, राजदार बनना, राजदारी करना। कह रहे ना फला इमाम के राजदार थे, राजदारी के दो सेक्शंस होते थे, एक तो वो जो मलकूती और मानवी और रूहानी और इलाही मनासिब के वो लेकर, फजाइल और मनाकिब को लेकर राजदारी थी, जो जो बाज साहेबान अहल और जिनमें ये कैपेबिलिटी थी उनको दिखाया, जैसे कुमेल वगैरह, और बाज ये थे कि जो सियासी इमाम का पैगाम रसानी करना, कार उमूर इमामत में, कार इमामत में राजदारी बरतना, आग की भट्टी में डाला जाए, टॉर्चर किया जाए, लालच दी जाए, मनसब दिया जाए, कुर्सी दी जाए, पैसा दिया जाए, लेकिन उस राज को फाश न करना, ये बहुत अहम है। इमाम यहाँ फरमाते हैं इशारा भी मत करो, मुझ पर सलाम भी ना करो, हाथ से इशारा भी ना करो, क्योंकि तुम्हारी जान बचाना जरूरी है इस वक्त, तुम्हें, तुम रहोगे तो मैसेज आगे जाता रहेगा। अब इस सिचुएशन में क्या जो सिस्टम क्या हो सकता था, क्या तरीके का इख्तियार किया जा सकता था कि इमाम और उम्मत के दरमियान राबिता बरकरार रहे, ये बहुत अहम है, क्योंकि जो निज़ाम दिया है हमारे पास वो इमामत विलायत का निज़ाम है, और ये इमामत विलायत का निज़ाम उम्मत के ऊपर नाफिज होना है, लिहाजा इमाम और उम्मत के दरमियान, इमाम और मामून के दरमियान ताल्लुक और रिश्ता और राबिता बरकरार रहना हर वक़्त जरूरी है। उसमें जो एक अहम सिस्टम था वो तकरीबन चौथे इमाम के दौर से शुरू हुआ, छठे इमाम के दौर में वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ माशाल्लाह से, और वो था वकीलों का, रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा, वकील, काबिल भरोसा अफराद, काबिल भरोसा शख्सियात, क्योंकि अहले तशी भी बहुत बिखर गए थे जोग्राफिकली, अब वो अराक और मक्का मदीना तक महदूद नहीं थे, बहुत दायरा फैल गया था, अफ्रीका, यमन, अफ्रीकी ममालिक से लेकर एशिया की तरफ हमारे जो है बड़े सगीर, जिसको हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना के बॉर्डरों तक, और इधर ईरान, अच्छा खासा ईरान में स्पेशली कुम में, ये इसी तरह खुरासान अफगानिस्तान से लेकर उस तरफ कला का स्रोत है, यानी वस्ती एशिया ई रियासतें, यहाँ तक एक जुग्राफिया फैल गया था, क्योंकि शिया मजबूर भी थे फैलने पर। पॉलिटिकली जो दारुल हुकूमत का एरिया था वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था वहां लाइफ गुजारना। अब इन सबको एक तस्बीह के दानों में जोड़ के रखना है, इन सब ने इमामत विलायत के साथ इन टच रहना है, तो कैसे पॉसिबल होगा ये? उसके लिए एक सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा ना, वो था वकला का सिस्टम, नुमाइंदों का सिस्टम, फुकाहा का सिस्टम, मुज्तहिदीन वाला सिस्टम, जो कनेक्ट, एक तरह से कह सकते हैं कि कनेक्टिंग पॉइंट्स थे, जोड़ के रखते थे इमाम उम्मत के दरमियान, वास्ता बन जाते थे उस जमाने में। ये जो इमाम इमाम जमाना के पहले वकील हैं जनाबे उस्मान इब्ने सईद, ये असल में ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के क्या है, खास वकला में से थे। इस तरह के वकीलों के जरिए से ये निजाम चलता था। लिहाजा एक और जो फायदा इसका ये हुआ कि लोग असर गईबत में जो गैर मासूम की कयादत और दीनी लीडरशिप और शरई मसाइल के हल के लिए मुश्तहिद और फकीह की तरफ जो उन्होंने जाना था, उसकी भी एक ट्रेनिंग होने लगी, उसकी भी एक तरबियत लोगों की होने लगी। देखे ना, यही है कि थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, न सिर्फ अपॉर्चुनिटी में बल्कि उस थ्रेट को उन्होंने एक हाई लेवल के जो है एक आइडियल चीज में तब्दील कर दिया। आईमाए मासूम हमारे लिए, हम भी ये कर सकते हैं, हमें ये सिखाया है आईमा ने कि जब थ्रेट हो तो उसको इतनी हाई लेवल की एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दो, एक आइडियल सिचुएशन पैदा करो। देखिए, इसी सख्तगिरी को, जबरी निजाम को, नजरबंदियों को, हाउस अरेस्टिंग को, इतनी हाजिरी लगवाना वगैरह को कन्वर्ट कर दिया असर गैबत के लिए, ऑटोमेटिकली लोगों को तैयार कर दिया कि अब लोग जो है कुम में मौजूद फकीह से पूछें, इसहाक से पूछें, मसलन उस्मान इब्ने सईद से पूछें, लोग तरबियत पा रहे हैं। बस वकीलों का निजाम एक बड़ा था। दूसरा जो निजाम था वो कम्युनिकेशन का जो जरिया था वो लेटर था, खतूत, पोस्ट के जरिए से। पोस्ट जाहिर है कि आज की तरह की मॉडर्न पोस्ट तो नहीं, लेकिन पोस्टमैन होते थे, मखसूस कासिद होते थे, अइमा के मसलन मखसूस कासिदीन के नाम है, जो काबिले भरोसा हो। आप जाहिर है एम्प्लॉय तो नहीं रख सकते थे किसी भी बंदे को, यहाँ पर तनख्वाहदार मुलाजिम की जरूरत नहीं थी, बल्कि बा ईमान एक क्या कहते हैं सरफरोश, बा ईमान सर को दार पे चढ़ाने के लिए तैयार रहने वाले, काबिले भरोसा, बा एतमाद, एक ऐसे मोमिन की जरूरत होती थी, एक फिदाई की, एक फिदाकार की, एक सेक्रीफाई का अंसुर रखने वाले एक ऐसे फर्द की जरूरत होती थी जो कासिद बने इमाम का और उम्मत को पैगाम पहुंचाए। अली इब्ने हुसैन बाबुया जो कि कुम में आप होते थे, वो इमाम के नुमाइंदे थे, तहरीरी पैगामात के और खतूत लेकर पहुंचते थे, शरी सवालात वगैरह लेके जाते थे, एक बिजनेसमैन के रूप में जाते थे, एक ताजिर की शक्ल में, कभी कोई घी बेच रहा है, कभी कोई चमड़े बेच रहा है, कभी कोई और जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है इधर से उधर कर रहा है। सीजन्स के अंदर फ्रूट का सीजन है, खजूर का सीजन है, मुख्तलिफ इस ईद कुर्बान के बाद का सीजन है, तो इस तरह के मुख्तलिफ जरियों से ये लोग, असल में बिजनेस इनका प्रोफेशन नहीं था, असल जॉब इनकी बिजनेस नहीं थी कि ये कहें जी असल जॉब तो बिजनेस थी तो साइड में ये काम नहीं, असल काम इमाम की खासदी करते थे, फोकस उनका वो चीज था, बिजनेस ठप हो जाए, प्रॉफिट मिले, लॉस करें, ये एम नहीं था उनके लिए, उनके लिए अहम ये था। देखें फर्क कहाँ आता है, अच्छी बात है बिजनेस साथ में चले, हमारा मसला ये है हमारे पास असल क्या चीज है, नकल यानी उसके साइड में क्या चीज आ रही है। मसलन असल जो है मैं इमाम की मर्जी चाह रहा हूँ, या असल में मैं कारोबार चाहता हूँ, मसलन मैं जियारत के, माफ करना मैं ये थोड़ी सी बातें ऐसी करने लगा हूँ जो कि अब क्योंकि आप लोगों के साथ एक बहुत कुर्बत रही है और माशाल्लाह आप लोगों में पोटेंशियल है, तो जरूरत है कि क्वालिटी को अपग्रेड किया जाए, खुद मुझे अपनी भी और आपकी भी वही है। देखिए, एक दफा मैं जियारत के लिए जा रहा हूँ करबला में, इसलिए कि मुझे औलाद चाहिए, मेरी एक हाजत फंसी हुई है, मेरा एक मसला उलझा हुआ है, ठीक है, आई मैंने कबूल किया है इसको भी, लेकिन क्वालिटी ऑफ जियारत में हाई क्वालिटी की नहीं है। कहें भाई मैं असल में इमाम से जियारत करने जा रहा हूँ, मुखलिसन इमाम के लिए, बस इमाम की जरिए में जिमनी तौर पर उसके साथ अटैच हैं भाई कुछ मसाइल भी हैं वो भी पेश करूंगा उधर, लेकिन असल चीज जियारत है, असल बात ज्यादा देखो क्वालिटी बढ़ गई ना यहाँ पर। ये लोग बिजनेस में, बिजनेस इनका एक साइड बहुत था, असल काम ये कासिदी करते थे, असल काम ये पैगाम रसानी करते थे। तो एक तो ये पहलू था कि किस तरीके से इल्मी खिदमात हैं इमाम अली मकाम की। देखें शॉर्ट टाइम है, ऑलमोस्ट 5 साल से भी कम का अरसा आपको मुयसर रहा है, और सख्ती भी इतनी है उसके बावजूद खिदमात भी हैं। क्योंकि देखिए बेसिकली ये है कि पावर गलत हाथों में नहीं रहना। जब पावर से मुराद वो पावर नहीं जो आज की टर्मिनोलॉजी में, मैंने तो वो समझाने के लिए यूज किया है, इख्तदार गलत हाथों में नहीं रहना चाहिए, ताकत गलत हाथ में नहीं रहना चाहिए, पैसा बैतुल माल गलत हाथ में नहीं रहना चाहिए। मुआशरे में पर्सनैलिटी की जो एक डोमिनेशन होती है, एक शख्सियत की जो असर रसूख होता है, वो गलत आदमी की नहीं होनी चाहिए, गलत आदमी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जब गलत हाथों में ताकत कुव्वत पैसा और असर और रसूख आ जाए तो वो तो मिस यूज करते हैं। यही सूरत हाल थी कि बनी अब्बास, बनी मरवान, बनी क्या कहते हैं उमैया, इनके गलत पावर की वजह से सरकारी मिशनरी स्टेट पावर को यूज किया इन्होंने राह हक के खिलाफ, इन अराफात पैदा कर लिए थ्योरेटिकल पॉलिटिकल सोशल मॉरली हर लिहाज से, मजहबी दीनी तालीमात को उन्होंने बिगाड़ दिया स्टेट मिशनरी के जरिए से, स्टेट पावर के जरिए से। स्टेट पावर मतलब सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, स्टेट में खजाना है, स्टेट में एक हुकूमती मिशनरी है, हुकूमती पेड लोग हैं। इसलिए दीनी इनराफात बहुत ज्यादा थी। ये अइमा ने बहुत कोशिश की इसको फिक्री तौर पर दुरुस्त डायरेक्शन पे, लोग आज भी है लोगों के पास दीन है, ऐसा दीन है जो सुलाता है उम्मत को, जगाता नहीं है, रुसूमात पर मबनी एक दीन है, कंफर्ट जोन से में डालने के लिए, बस उसी से अंदर रहना है बाहर नहीं आना है, आराम तलबी का दीन, आसाइश का दीन, खाओ पियो ऐश करो, दो चार मसलन क्या कहते हैं जुमले कहो, मेरे मौला मेरे आका कह दो, थोड़ा पूरा हो गया मामला, खत्म हो गया जी, चलो बैठ जाओ आराम से। ये इस तरह के दीन की इंटरप्रिटेशन, ये स्टेट उस वक्त की जो बनी अब्बास, बनी उमैया, मरवान और इन इनकी बनी मरवान, इनकी स्टेट का फैलाया हुआ दीन ये होता था, सुलाने वाला दीन, थकाने वाला दीन, आराम तलबी, बेफिक्र रहना, गैर जिम्मेदार रहना, कोई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले ना करना, मुझे क्या लेना देना भाई। बाज लोग कहते हैं अगर साहब हमें पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, हमें आजादारी करने दो, अल्लाह अकबर। तो आप फिर इमाम हुसैन भी ये कह सकते थे मुझे कुरान की तालीम देने दो, तो कहते यजीद खुशी से कहता मैं मदरसे खोल के देता हूँ आपको, कुरान की तालीम दे दें आप, अगर आपको हुकूमत से और मेरी इनहराफात से और मेरे गलत फैसलों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आप फ्री बिल्कुल आजादी, मेरी मुखालिफत नहीं करेंगे तो मैं तो तैयार हूँ इस काम के लिए। इसहाक किंदी मशहूर आपने कई बार सुना है, वो बैठ गया और उसने सोशल एक तरह से समझे खुद को क्वारंटाइन किया हुआ था, इसहाक किंदी ने ऑलमोस्ट उसने क्वारंटाइन में डाला था कि भाई मुझे एक बुक लिखनी है कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है, अतनाकुज़ फिल कुरान है, और मैं किसी से नहीं मिल सकता इस वक्त, बंद कर दिया अपने आप को। उनके स्टूडेंट्स थे, इमाम आली मकाम की खिदमत में पता चला कि वो इस तरह की एक किताब लिख रहे हैं, इमाम आली मकाम ने स्टूडेंट्स के जरिए से पैगाम भिजवाया और उसको एक थ्योरेटिकल एनालिसिस के साथ भेजा। मैं उस तफसीलात में नहीं जाना चाहता, आप सिर्फ आपके जो जहन में मालूमात है उसको जगाना चाह रहा हूँ। और फिर वो क्योंकि इन प्रिंसिपल एक ऐसा बंदा था कि जो दलील आ जाए तो एक्सेप्ट करता था, हमारी तरह हट धर्म नहीं था, हमारे यहाँ ये मसला है हम साउथ एशियन में, दलील आए तो भी हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, 2 + 2 = 4 की तरह प्रूफ हो जाए, सूरज निकल रहा है तो भी हम हट धर्मी करते हैं, वो हट धर्म नहीं था कम से कम। जब इमाम ने एक लॉजिकल दलील दे दी विद कुरानिक दलील तो आलिम था, एक्सेप्ट किया उसने। और इसी तरह इमाम आली मकाम ने तफसीर कुरान बयान की, लेकिन जाहिर सूरह बकरा की 200 कुछ आयतों तक तफसीर बयान हो सकी थी, वो हमारे पास वो आज जो ओरिजिनल बुक है वो नहीं है, लेकिन उसके कोटेशंस और उससे कुछ चीजें जो दीगर किताबों में आई हैं उस वक्त वो मौजूद हैं। बायोग्राफी और इल्म रिजाल और इस तरह के मुख्तलिफ उलूम के अंदर आपने कई स्टूडेंट भी बनाए और इन उलूम के हवाले से आपने लोगों को ट्रेन भी कर दिया। मिसाल के तौर पर उसी तफसीर को लेकर एक बहस जो है इमाम ने बयान की उन शख्स को जो लोग इथियस्ट हैं या मुलहिद हैं, जिस जो कहते हैं कि जो ओरिजिनलिटी है यानी असलियत और हकीकत है वो मटेरियल को या जो है मैटर या मादे को हासिल है। ये एक कंसेप्ट है ना, उस वक्त भी ये कंसेप्ट था जो जो मुलहिद लोग थे, तो इसलिए वो कह रहे थे कि लिहाजा जो मादा है क्योंकि उसे ओरिजिनलिटी और असलियत हासिल है लिहाजा वो अबदी हैं, सरमदी हैं, परमानेंट समझते थे। मादा एक परमानेंट चीज है यानी कभी फना नहीं होगा। और उनका ये भी कंसेप्ट था कि दुनिया की ना कोई बिगिनिंग है ना कोई इसका द एंड है, लिहाजा वो पैगंबर इमाम फरमाते हैं ये कि अपनी तस्वीर में वो पैगंबर खुदा के साथ आर्ग्यू करते थे, बहस करते थे, और वो कयामत वही अल्लाह का नुमाइंदा रसूलुल्लाह ये इसके मुनकिर थे, क्योंकि जाहिर है कि वो जब दुनिया के बारे में एक मैटेरियलिस्टिक व्यू रखते हैं तो कैसे जो है वो किसी खुदा के और किसी क्रिएटर के बारे में एक कंसेप्ट पैदा करें कि फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव और नुमाइंदों की बात हो जाए। इसीलिए जो है इमाम फरमाते हैं कि पैगंबर खुदा ने उनके साथ बहस की और कुरान मजीद की बाज आयात नाजिल हुई और पैगंबर खुदा ने उनके साथ एक डिबेट किया। उस डिबेट के अंदर जो है इमाम बयान फरमा, बस शॉर्ट करता हूँ, ज्यादा इसको जाऊंगा नहीं एकेडमिकली डीप बातों में जाकर, यानी क्योंकि उनका ख्याल ये था कि कोई भी मौजूद यानी कोई भी एग्जिस्टेंस ये खुद अपने आप यानी बाय सेल्फ खुद को मैनेज कर सकता है, ये उनका कॉन्सेप्ट था। जैसे कि आज भी है ये ना कहें ये पुरानी बातें हैं, वो पुरानी बातें आज भी मॉडर्न तरीके से आ रही हैं। हमारा तो सरोकार है तो हमें मजबूरन पढ़ना पड़ता है। वो कहते हैं कोई भी अगर एक एक एग्जिस्टेंस है मौजूद है तो वो कह रहे हैं वो बाय सेल्फ खुद को मैनेज कर रहा होता है, बाय सेल्फ मैनेजमेंट करता है, वो अपने आप मैनेज करता है। लिहाजा वो कहते हैं कि क्योंकि बाय सेल्फ हर एग्जिस्टेंस अपनी मैनेजमेंट खुद करता है, लिहाजा एक इंसानी ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी क्या है, इंसान खुद लॉ बना सकता है, खुद कानून बना सकता है। आज भी यही कंसेप्ट है ना, ह्यूमनिज्म का जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट और क्या है जो जदीद हमारी जो यूरोप में हम रहते हैं, तो ये वही इमाम फरमाते हैं कि पैगंबर खुदा के सामने ये इश्यूज आ रहे थे, वो भी यही कहते थे कि भाई ह्यूमन सोसाइटी को खुद ह्यूमन बनाएगा क्योंकि हर एग्जिस्टेंस बाय सेल्फ मैनेजमेंट रखता है, लिहाजा ह्यूमंस भी अपनी सोसाइटी को बाय सेल्फ खुद ही करेगा, किसी और को उनके लिए कवानीन और लॉज और रसूल और पैगंबर और वही और इसकी आने की कोई जरूरत वगैरह नहीं है। ये कंसेप्ट था उस वक्त। उस वक्त जो है इमाम अपनी इसी तफसीर के अंदर फरमाते हैं कि उस वक्त पैगंबर खुदा ने सवाल किया कि भाई देखो आपकी जो नॉलेज है, आपने जो एक डिस्कवर किया है, जो सोच है, जो इल्म है, वो उसका स्टैंडर्ड है क्या, मैयार है क्या, किस एविडेंस या प्रूफ या दलील की बुनियाद पर आप कहते हैं कि दुनिया का ना कोई बिगिनिंग है ना कोई आगाज है ना कोई अंजाम है, इसका कोई एंड भी नहीं है। तो वो जो है क्योंकि उनका एक ख्याल वो कहते थे कि हमने क्योंकि कायनात की कोई इब्तिदा नहीं देखी है, ये क्रिएट होते हुए इस पूरी यूनिवर्स को इस कायनात को हमने देखा नहीं है और न ही हमने इसका कोई एंड देखा है, लिहाजा क्या है कि हम तो इब्तिदा जब नहीं देखी एंड को भी हम नहीं देख पाए नहीं देखा है या नहीं देख सकते हैं, तो फिर कहा कि हम कैसे जो है यकीन कर सकते हैं। रही बात ये जो दिन और रात है ये एक क्योंकि एक परमानेंट चीज है तो एक बाय सेल्फ और ऑटो सर्कल में चलते रहते हैं, ये इसे कुछ चलाने वाला है नहीं, ये ऑटो सर्कल है, खुद ब खुद चलते हैं, ये बाय सेल्फ निजाम शमसी है या वगैरह दूसरी चीजें हैं, ये कोई बाहर से कोई इसको मुहर्रिक नहीं है, बाहर से कोई इसको नहीं चलाता बल्कि खुदकार चलता है। इमाम फरमाते हैं अपनी तफसीर में कि उस वक्त अल्लाह के रसूल ने उनके साथ एक बहस की और फरमाया, देखें एक तरफ आप लोगों का कहना यह है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते जिसको आप देख नहीं सकते हो, अगर आपने देखा नहीं है तो एक्सेप्ट भी नहीं करना है आपने, दूसरी बात यह है कि कायनात के लिए यानी कोई परमानेंट चीज है, अबदियत है, अजलियत है, दाइमी है, सरमदी है, इसके आप कायल हो कि हमेशा रहने वाली है दुनिया, कभी फना नहीं होगी, यानी इसका कोई एंड नहीं है, कोई कयामत नहीं, कोई माद नहीं है। कह रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने कायनात की अबद और अजल को देखा है, جو اعتقاد رکھتے ہو. تو یہ اعتقاد آپ نے کہاں سے, یعنی خود ان کی دلیل کو خود انہی کے لیے ایک پروف بنا کے پیش کر رہے ہیں. ایک طرف آپ اس کو کہتے ہیں کنٹرڈکشن ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں کنٹرڈکشن ہے, آپ کے تو دیکھا نہیں ہے تو ایکسپٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ ابد اور کے قائل کیسے ہو رہے ہو کہ یہ ہمیشہ رہے گی, کیونکہ ہمیشہ رہنے کا تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, تم نے خود تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے, تو پھر کہاں سے یہ اعتقاد آپ بنا سکتے ہو؟ یہ خود کنٹرڈکشن ہے اس نظریے کے اندر. بس تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے, تم نے اس کا آغاز دیکھا ہے نہ تم اس کے انجام تک رہو گے, لہٰذا ابد کا بھی پتہ نہیں کر سکتے ہو. لیکن دوسری طرف کے تو یہ ابدی ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے, اور اس کو ایک طرف کے تو ہم نے جو چیز دیکھی نہیں اسے ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا جو ہے اصل میں یہاں امام کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں, امام اس زمانے کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اسلامی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات اور اہل بیت کے دروازے میں معرفت اور پہچان اور علم اور کسی چیز کو ڈسکور کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں, اور بھی ٹولز ہیں, سینس اور حس سے اوپر بھی کوئی چیز ہے. یہ مت کہو کہ اگر کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے تو اسے ہم مانیں گے نہیں. کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو ضرور دیکھا جائے پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, یہ باتیں مت کیا کرو, کیونکہ کائنات میں لاکھوں ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی وجود کسی دوسرے کے سبب کے ذریعے سے ہے. جیسے بارش برستی ہے, یہ بارش کا پانی زمین پہ آتا ہے, اس سے پھر جو ہے زمین میں چیزیں اگنی شروع ہوتی ہیں, وغیرہ 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 ہیں. امام یہ اصل میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور بھی ذرائع ہیں سینس کے علاوہ, عقل ہے انسان کی, سوچ ہے, پھر روحانی اور کیا کہتے ہیں باطنی مشاہدات ہیں, کہ جو انشاءاللہ میں نہیں چاہوں گا آپ کو زیادہ زحمت دوں اس طرح کی چیزوں کے اندر. لہذا امام جو ہے ان کو حسیات سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, مٹیریل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں, معرفت اور پہچان کے ٹولز اس تفسیر کے اندر اور بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ عقل سلیم مشاہدات سے بہت کچھ سمجھ سکتی ہے, جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی عقل سلیم اس کو معلوم کر سکتی ہے, سبب اور مسبب کے بغیر چیزیں نہیں ہو سکتی, خود بخود سے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. ایک تو یہ اس طرح کی آپ نے نظر لگا کہ امام عالی مقام اس شارٹ اپنی جو ہے امامت کے دور میں ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, علمی ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو بچا بھی رہے ہیں, خود ہاؤس اریسٹ بھی ہیں. آپ دیکھیں کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, ہمارے ساتھ سامنے ایسی سچویشن نہیں ہے, ہم کتنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, ہم کتنے آرام زندگی میں رہتے ہیں, اس کے باوجود اگر ہمیں ایسی ایسی چیزیں بلینڈرز ہم کریں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسیپٹ کرے امام ہم کو, اس کے باوجود امام ایکسیپٹ کرے جی ہم بلینڈر کر دیں, اس کے باوجود خود امام ایسی لائف گزارے, اس کے بعد سکھائیں بھی ہمیں اور دکھائیں بھی, کوئی معجزے سے کام نہیں لیا امام نے یہاں پر, کوئی ایسی مافوق العادہ جو ہے حرکت پاور کے ذریعے سے امام نے کوئی کام انجام نہیں دیا, ہم کہیں گے جی تو امام نے معجزہ کیا تو ہم تو نہیں کر سکتے. یہ وہی ایک نارمل انسان کی طرح زندگی جیا امام, نارمل انسان کی طرح اسی ہاؤس اریسٹ کے اندر جو ہے یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں, یہ ہمیں سکھا رہے ہیں اور ہم بہت آرام طرف زندگی میں. دوسرا بڑا پرابلم, میں زیادہ آپ کا وقت نہ لے لوں, زیادہ وقت نہیں لیتا, دوسرا مسئلہ تھا یہ بابوں کا مسئلہ جس کو آپ پیری فقیری کہتے ہیں آج ماڈرن لینگویج میں. میں ان اصلی فقیروں کی بات نہیں کرتا جو اولیاء اللہ ہیں, وہ پروفیشنل جو پیری فقیر, وہ آج بھی ایک پاکستان میں پھر رہا ہے, کردی جو عراقی کردش تھے, ایک بڑا جو ہے بدنام زمانہ, وہ پولیٹیشنز کا بھی آؤ بھگت میں لگے ہوئے ہیں سارے پولیٹیشنز ہمارے. بابوں والے ہتکنڈے, پیروں فقیروں والے ہتکنڈے امام کے دور میں بھی تھے, ائمہ کے دور میں رہے ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, زیادہ آپ کو نہیں دیتا, یہ بابوں والے مسئلے یہ صرف حضرت موسیٰ اکیلے کے سامنے سامری نہیں آیا تھا, ہر دور میں سامری آئے ہیں ولی اللہ کے مقابلے میں, امامت کے مقابلے میں, ولایت کے مقابلے میں. مشہور واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا وہ راہبوں کا, جو کہ اہل کتاب راہب تھے, علماء تھے, وہ دعا کرتے تھے تو بارش ہوتی تھی, جب دعا کریں بارش ہو گئی, جب دعا کریں بارش ہو رہی ہے. تو اب یہ تو لوگوں کے لیے, اگر ہم برصغیر کے لوگ ہیں تو ہم نے امام کو چھوڑ کر انہیں بابوں کو, انہیں راہبوں کو ہم نے, یہ اصل امام, یہ وہ جو حسن عسکری جو بیچارہ روزانہ جا کے حاضری لگواتا ہے وہاں پر, وہ امام نہیں لگتا ہمیں, हमारे तो ये बन जाता कंसेप्ट, वे खुदा ऐसा होता। अभी देखे ये जो कुर्दी आया है तो क्या सूरत हाल बनी हुई उधर, वो पहले डबल शाह थे, पता नहीं ट्रिपल शाह, पर क्या क्या आते थे वहां पर, वो एक टीवी पे बैठ के रोजाना वहां पर पता नहीं लोगों की तकदीरें बदल रहा था। लगता ऐसा है कि जैसे नऊज़ुबिल्लाह खालिक बैठा हुआ है लोगों की, सारे उसके कब्जे कुदरत में है, कायनात की हर चीज, वो लोगों का मुस्तकबिल भी जानता है, हाल भी जानता है, यूए भी कर सकता है वो, तो अपना क्यों नहीं ठीक करता है, क्यों टीवी में बैठ के वहां जो है 20,000 रुपए पर घंटे के हिसाब से उनके साथ एग्रीमेंट साइन करके बैठा हुआ है। कि तो क्या अजीबो गरीब सूरत, ये बाबू वाला मामला, ये फकीरों पीरों वाले झूठे फ्राडी, ये इमाम के दौर में भी था, ये राहिबों, इन्होंने ये दुआ करते बारिश हो रही है। अब जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन के मसला है। जो पक्के ईमान वाले हैं, जिन्होंने अक्ल सलीम, जो नबी बातिन है, दलील मंतिक लॉजिक और फिर रूहानी तहारत के साथ दीन को एक्सेप्ट किया, वो कभी नहीं हिलेंगे। वो इन नाम नेहात जो है राहिबों और बाबू और पीरों और फकीरों और असल इमाम व वली व विलायत तकवीन, इसको बेहतरीन तरीके से जज करते हैं। लेकिन आम पब्लिक बिचारी क्या, जिन्होंने कभी अकल इस्तेमाल ही नहीं किया, जिन्होंने कभी अपनी तहारत की तरफ तवज्जो नहीं दिया है, वो बेचारे रिवायती किस्म के लोग हैं, वो बेचारे सिर्फ चंद रसूमात अदा करके समझते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया है इमामत के और विलायत के ऊपर, उनका क्या होगा, वो तो गए उनका हमें हसन करिए आप खानदान इसमें तहारत के, देखो ये बंदे दुआ करते हैं बारिश भी करती है, जब हाथ उठाया आसमान की तरफ बारिश दर 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 बारिश आ रही है। तो कंफ्यूजन की पीरियड है। इमाम ने मसले को हल कर दिया, माया इन राहिबों को कहो ये जो हाथ में वो हड्डी ली हुई है वो किसी पैगंबर की हड्डी है, वो हड्डी की वजह से बारिश हो रही है ना इनकी वजह से, हड्डी इनके हाथ में है। खुदा की ये मसलहत है कि जब इस पैगंबर की एक मुकद्दस नबी की हड्डी को लेकर खुदा की दरगाह में आप उठेंगे वास्ता करार देंगे तो बारिश तो होगी, वो जिस हाथ में भी होगी बारिश हो जाएगी, राहिब हो या कोई और हो, किसी और के हाथ में दे दो तो वो भी दुआ मांगे तो बारिश हो जाएगी। कमाल उस राहिबों का नहीं है, उनकी बातनी तहारत का और मलकूतियत में पहुंचने का मसला नहीं है, वो विलायत तकवीन नहीं रखते कि तकवीन में उनका कब्जा हो गया, बादल उनके कब्जे में आ गए, बारिश उनकी कब्जे में आ गई, अब उनके इशारों से बारिश बरसती है, उनके इशारों से बादल हटते हैं, उन मौसम पर कब्जा उनका बन गया, जमीन और आसमान पर कब्जा नहीं, कब्जा अभी भी किसका है, इमाम हसन आस्करी अलैहि सलाम का है, वाकईकी वलीउल्लाह है, विलायत तकवीन और तशरीह रखते हैं। ये बाबों का मसला था, इमाम आली मकाम इसको भी मुकाबला कर रहे हैं। फिर एक और मसला है अहले तशरीह की मईशत का मसला है। अहले तशरीह माशरे में मईशत के अतबार से इकोनॉमिकली बहुत कसम पुरसी में गए, तो गवर्नमेंट तो उनको कभी फैसिलिटेट नहीं करती, हुकूक नहीं देती, उनके उनके बिजनेस को हमेशा डिस्टर्ब करती है, खराब करती है, उनको कोई ऐसा सरकारी ओहदा नहीं मिलता, नौकरी उनको मिल नहीं सकती, कारोबार के लिए वो फ्रीडम वो रखते नहीं बेचारे, कोई उनके साथ कारोबार करते हुए डरते हैं लोग, वही सिचुएशन सूरत हाल जो ऑलमोस्ट अभी हमारे पास है पाकिस्तान में थोड़ी बहुत हो रही है, करने की कोशिश जा रही है, कई दहाइयों से जा रही है और भी जगहों में है, खासकर जो थोड़ा सा दीनी है, दीनदार है, मजहबी है। इसीलिए आप देखते हैं, मैं नहीं वो इंसल्ट करता किसी की, नऊज़ुबिल्लाह और नाम भी नहीं लेना चाहता, एक ताजिर बरादरी है हमारी शिया, बहुत खिदमतकार है मजहब के, लेकिन वो हमेशा ऐसे मुश्तहिद की तलाश में होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल है उनके ख्याल में, वो समझते हैं कि इस्लाम में इस तरह की नहीं। ये मसला क्या है, ये प्रेशर की वजह से, कहते हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारे बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से है कि हम एक ऐसे मुश्तहिद को फॉलो करें जो क्लियरली कह दे मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, पॉलिटिक्स इस्लाम में है ही नहीं है, तो सीधे सीधे कह दे इस्लाम का कोई सियासी निज़ाम नहीं है, यानी गदीर के तशरीही हिस्से को इनकार कर दे, कर इस्तीफा ठीक थी, इमाम अली मलकूती जो है वली थे, बाहर जो विलायत थी यानी हुकूमत तो सरपरस्ती वो दूसरों के पास थी, सकीफा के पास थी, यही हो गया ना बाहर। तो एक बड़ा मसला था आलम तशय्यो की मईशत का मामला, जाहिर है तशय्यो इमाम बहुत कोशिश करते थे कि शियों की मईशत बेहतर हो जाए, इक्तसादी हालत बेहतर हो जाए, माली मदद करते थे, खुम्स जकात की एक सिस्टम बनाया था और कहते थे कि इसको आप यूं करें यूं करें यूं करें, खुद कफील हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आज भी जरूरत है बाबा, जो यूरोप में आए हैं हम सब, इधर हम सब बैठे हुए क्या खाने आए हैं, ये मक्का है, मदीना है, करबला है, क्या है, नजफ है, क्या चीज है हमारे लिए इधर, ये क्यों हमारा काबा और कबला बना हुआ है, ये जमीन कौन सा तकद्दस है, इधर क्या चीज मुकद्दस है यहाँ पर कि हम सर तोड़कर किश्तियों में बैठकर डूब कर पत्नी समंदरों में जेवरात बेचकर भैंसे बेचकर यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये क्या इमाम जमाना के जहूर होने वाली जगह है, करबला है, ये कौन सी जगह है, क्यों ये कर रहे हैं? अब आए हैं तो नियतें बदलें, मैशत ठीक करें अपनी, वहां लोगों की मैशत ठीक करें, बलाखर ये भी तो एक अहम चीज है, कम से कम अपनी नियत बदलें, नियत को साफ करें, मैशत को ठीक करें। ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को हमारे लिए पैगाम, माफ करना मैं खरी खरी बातें कर रहा हूँ, आपको बुरा लगता है तो मुझे माफी दे दें, लेकिन इमाम का पैगाम तो ये, इमाम हसन अस्करी कहते हैं तशी, वैसे तुम लोग जोग्राफिकली एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाए पोलिटिकल जालिम निजाम की वजह से, यहां तक कि आज तक तुम्हारे दिमाग में यही बैठा है कि हमारा उससे कोई लेना नहीं, हमें तो आजादारी चाहिए, हमें तो जश्न मनाने दे दो, उसी पॉलिटिकल जुल्म की वजह से तुम्हारे अंदर ये कंसेप्ट आ गया। इकोनॉमिकली खुद को मजबूत करो, स्ट्रांग करो, क्योंकि मजहब को इकोनॉमी की जरूरत है, कार इमामत के लिए भी जरूरत है, खुद तुम्हारी अपनी मैशत ठीक होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर जरूर अच्छे तरीके से रहो, अच्छे घरों में रहो, दूसरों की मदद किया करो, नेकी के कामों में आगे आगे आ सकते हो, तो ये तब हो सकता है तुम्हारी मैशत ठीक हो। तो जो लोग यूरोप में आए हैं मेहरबानी करें, अपनी भी मैशत ठीक करें, दूसरों की भी मैशत ठीक, मेहनत करें यहाँ पर, यहाँ आके फिर दूसरी चीजों में ना उलझे, जवान खासकर वो फजूलियात में वक्त जाया ना करें, मेहनत करो यहाँ पर, मुशक्कत करो, नियत के साथ करो, परवरदिगारा मैं आया, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, पीछे 10 बंदे हैं खानदान के अंदर, 10 जरूरतमंद हैं, 10 की सेहत के मसले हैं, एजुकेशन के मसले हैं, फलान मसले हैं, फलान मसले हैं, मैंने जब ये बेड़ा उठाया है परवरदिगारा, ये हिजरत की है जो असल में नूर से जुलमत की तरफ हिजरत है, तो खुदाया मुझे माफ कर दे, मैं लेकिन मैं ये बेड़ा उठाता हूँ, ये जिम्मेदारी उठाता हूँ, ये हो गई मर्दाना काम, ये हो गया मोमिन वाला काम, ये हो गया इमाम हसन अस्करी के फॉलोअर्स का काम, ये इमाम जमाना के मुंतजिर के कामों में से कम अज कम जो है नियत साफ रहो तो कामों से। लिहाजा एक तो ये काम था जो इमाम फोकस कर रहे थे, तशय्यो की मैशत बेहतरी की तरफ आ जाए, पूरा एक सिस्टम इमाम ने बनाया था, खुम्स की इजाजतें दी हुई थी, लोगों को हिदायत करते थे कि एक दूसरे के साथ, ये जो तमाम अहादीसें हैं, अब मैं आपके ऊपर वक्त लंबा हो जाएगा अगर मैं कुछ अहादीस सुना देता इमाम के जो फरामीन हैं हर हवाले से, जो एक और मैंने अर्ज किया मूवमेंट्स के हवाले से कि 4 मूवमेंट्स चली थी, और एक और जो अहम तरीन मसला जो कि शुरू में हमने टच किया था वो ये था कि असर गैबत के लिए तैयारी, और जो कियोस्क पॉसिबल था कि क्रिएट हो जाए कम अज कम शिया सोसाइटी के अंदर, एक बोहरान बन सकता था हर लिहाज से, बोहरान अकीदती बोहरान जब पैदा होता है तो सारे बोहरान आ जाते हैं, फिर उसके साथ आ जाते हैं, फारसी में कहते हैं चूंकि सद आमद नवद हम पीछे, जब 100 खराब हो गया ना, 100% खराब हो तो फिर वो 80% 70% 50% सब खराब हो गया, इसका मतलब तो ये है। तो अकीदती बोहरान अगर पैदा हो गया, और वो भी मसला इमामत और विलायत, विलायत के मसले में उम्मत अगर गलत ट्रैक पे चली गई तो सारा बहुत, इसलिए बहुत जरूरी था। इमाम जमाना के वजूद को लेकर एक मसला था, क्योंकि इमाम के जमाना की वजूद के हवाले से मसलियात खुदाबंदी खतरात अपनी जगह इस तरह मौजूद थे कि इमाम के वजूद को इंतहाई हाईली, जिसको हम कहते हैं टॉप सेक्रेट रखना, सेक्रेसीज रखनी थी। जाहिरी तौर पर आप देखें इमाम की वालिदे मोहतरमा हजरत नरजिस या हजरत जनाब सैकल खातून की हमल भी नजर नहीं आता, जैसे नॉर्मली एक हामिला औरत का पेट उबरा होता है, अनयूजुअल होता है, जाहिर है कि हामिला है, पता पेट ही बता देता है कि वो पेट से, पता ही नहीं चल रहा था मौजदाती तौर पर, क्योंकि हुज्जत खुदा है उनको महफूज करना है और असबाब के जरिए से करना है, मालूम नहीं होता था। लिहाजा इसका क्या, जहां एक तरह से दुश्मन के हवाले से या उन हवालों से सेक्रेसी कर, दोस्तों के दरमियान भी एक कंफ्यूजन पैदा हो रही थी, भाई ना तो खबर आ रही है कि इमाम के घर में इमाम की जोजा में से कोई हामिला है, उसकी भी कोई खबर नहीं है हमारे पास, ये भी पता नहीं कि इमाम के यहाँ को बच्चा है जो इमाम होगा क्या होगा, इमाम की तरफ से कोई हिदायत नहीं आ रही है, ये बता रहे हैं होगा जरूर लेकिन अभी कोई एविडेंस प्रूफ मौजूद नहीं है सड़क की वजह से, कि दीगर जो है आइमा के बारे में थे कि इमाम पूछते थे कि मसलन इमाम के वालिद से पूछा गया इमाम नकी अलैहि सलाम से कि आपका जो है आपके बाद जानशीन कौन होगा, इमाम को बुलाया पहचनवाया मलय आम में एक बड़े डेलीगेशन को सबके लिए पहले से ही पता चल गया कि भाई इमाम के बाद ये जो है इमाम है, बाद वाले इमाम है, लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी नहीं थी। लिहाजा क्या है, एक बहरान पीरियड होने का पूरा इम्कान था। इसलिए इमाम ने क्या शुरू किया, अब आते हैं वो बात, वो खवास, खास अफराद, खवास राजदार, ईमानदार, अमानतदार, डट जाने वाले, न लड़खड़ाने वाले, न बिकने वाले, न झुकने वाले, लालच के शिकार नहीं होने वाले, डर और खौफ और जान के खतरे की वजह से ईमान को जो है न बेचने वाले, इन खवास को इमाम ने बुला के घर में इमाम जमाना से जियारत करवाई, दीदार करवाया और बताया ये मेरा बेटा है जो इमाम जमाना है। जिनमें एक मशहूर शख्सियत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मशहूर हैं, वो कुम से ताल्लुक रखते हैं। आप देखें जुग्राफिया भी, कुम उस वक्त तो उस तरह का शहर नहीं था ना जिस तरह आज है, लेकिन उस वक्त से ही बेस पड़ रही थी, शायद ये प्रिपेयर हो रहा था, खुदा जाने किसी दिन इसके ऊपर करेंगे। बल्कि मेरी एक स्पीच है इमाम रजा अलैहि सलाम और हजरत मासूमा के जो है वजूद मुबारक का ईरान में आने की पीछे फिलोसफी बैकग्राउंड में खुदा की मर्जी क्या थी वगैरह, एक है स्पीच, अगर किसी को मिलती है वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो फिर किसी दिन बहस करेंगे। अहमद बिन इसहाक कुमी है, ये चार इमाम के नुमाइंदे रहे हैं, यानी एक ऐसी शख्सियत जो शिया सोसाइटी जिनको जानती है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमाम, ये पहचानते हैं सब कि भाई अहमद बिन इसहाक कुमी चार आइम्मा के तसलसल के साथ आ रहे हैं नुमाइंदे बनकर, इनकी जो बात होती है वो एक ऑथेंटिक बात है, एक बड़ी शख्सियत है। कम से कम जो नॉन अरबिक एरिया है और एशिया और साउथ एशिया और ये जो इस तरह के इलाके हैं इनके लिए तो बहुत खुरासानी इलाके हैं, इनके लिए बहुत अहम है। ये जो है कुम के लोगों ने सवाल किया इनसे कि भाई 11वें इमाम के जानशीन कौन है, सुना है कि 11वें इमाम के खिलाफ जो है हुकूमत बड़ी जो है सख्तियां मजीद कर रही है और बाईद नहीं हो उनको शहीद कर दें, हम तो हिस्ट्री में पूरा देख रहे हैं 10 इमामों को शहीद कर दिया इन्होंने, तो शहादत होगी तो फिर हम किसकी तरफ, हमें तो पता ही नहीं, नाम भी मालूम नहीं उनका, जानते भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, कोई बंदे ने कोई बात कोट नहीं की जैसे बकिया आइमा के बारे में होता रहा है। ये उठ के चले जाते हैं सामर्रा, और सामर्रा में जो है इमाम के हुजूर पहुंचते हैं, इमाम अली मकाम इब्न इसहाक को जो है बताते हैं कि आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह ताला अपनी जमीन को बगैर हुज्जत के कभी खाली नहीं रखेगा, क्योंकि लौलल हुज्जतु लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा, हुज्जत खुदा नहीं होगी तो जमीन कंटिन्यू नहीं चल सकती है, तबाह हो जाएगी, हुज्जत खुदा की वजह से जमीन कायम और दायम है, क्योंकि हादी ना हो तो फिर बात ही खत्म हो गई, कैसे जमीन चल सकती है। इब्ने इसहाक कहते हैं मैंने अर्ज किया आपके बाद इमाम कौन होगा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम उठे, तशरीफ ले गए अंदर की तरफ यानी घर के अंदर वाले हिस्से की तरफ, उसके बाद जब वापस आए तो इमाम के साथ एक 3 साल का बच्चा भी था, उस बच्चे को लेकर आए और फरमाया इब्ने इसहाक ये हैं वो हुज्जत खुदा, ये हैं जो जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, ये हैं वो जो कि मुंतजरुल अलमहदी हैं, ये हैं वो आखिरी खुदा की हुज्जत जिनकी वजूद की बरकतों से जमीन कायम दायम रहेगी, और ये वो वजूद होगा यानी वजूद है जिसका ख्वाब अंबिया देखते रहे जो कि बकियतुल्लाह में से हैं, खुदा की उस आखिरी क्या कहते हैं हुज्जत, बाकी हुज्जत है जो जमीन में अदल इंसाफ का निजाम लेके आएंगे। अब देखें ये जो है इस अंदाज से इब्ने इसहाक किंदी को पहचाने, ये जो मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि कैसे जो तौकी होती थी वो क्या होता था, यानी कैसा स्पेशल एक सेक्रेट कोड वर्ड्स होता था इमाम और अपने नुमाइंदे के दरमियान, इमाम और अपने वकील के दरमियान। मसलन यही इब्ने इसहाक है, इन्होंने फरमाया कि यबना रसूलुल्लाह ऐसा करें कि आप मेरे सामने एक चीज तहरीर करें ताकि मैं आपके खत को पहचान लूं, आपकी तर्ज तहरीर को और दस्तखत को पहचान लूं, ताकि जब आपके नाम का कोई खत मेरे पास आए, हो सकता है दुश्मन कोई लेटर भेज दे, हो सकता है कोई जासूस लेके आए, हो सकता है कोई फ्रॉडिया बीच में धोखा दे दे, तो मैं कैसे पहचान लूं कि आपकी तरफ से, मोहर तो हो सकती है ना, कॉपी हो सकती है, मोहर तो कोई भी कॉपी बना सकता है ना, तो कहने में कैसे पहचान लूं। तो इमाम, देखें दिक्कत कीजिएगा, इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, देखें इस बात की तरफ तवज्जो मत देना मेरे खत को लेकर कि फॉन्ट जो है वो बोल्ड है यानी मोटा करके लिखा है या बारीक करके लिखा है, क्योंकि वो पेपर और या उस चमड़े की हजम के अतबार से कि ज्यादा अगर हो तो बारीक करके लिखूंगा, कभी हो सकता है मोटा करके लिखूंगा। ये देखो कि मैं लिखता किस अंदाज में हूँ, यानी हा को कैसे अंदाज में लिख रहा हूँ या को किस क्या इख्तियार कर रहा हूँ अंदाज। कहा कि ये ले लो, कह रहे कि इमाम ने उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। इब्न साक कहता है जब इमाम लिख रहे थे तो मेरे दिल में सोचा कि ये इमाम से ये पेन तो मैं लेके जाऊंगे, जो कलम होता था जो स्याही के अंदर इंक के अंदर ऐसे डिप करके फिर जो है उससे लिखा जाता था। कह रहे कि इमाम लिख रहे थे तो मैंने सोचा भाई मैं इमाम से कहूंगा कि ये मुझे दे दे। देखे ना, ये इश्क होता था ना, यही इश्क जो आज आप लोगों के दिलों में, आप पोइट्री में बयान कर रहे थे अभी, हम इमाम से मंसूब हर चीज से एक मामून को इश्क होता है ना, एक हकीकी उसको। कह रहे हैं कि इमाम ने तहरीर लिखी, लिखने के बाद उसे जो है उसके नोक को जो है साफ किया और मेरी तरफ बढ़ा दिया, यानी इमाम दिल की सूरत हाल को समझते थे, जब समझ गए कि भाई इतने साथ चाह रहे हैं कि ये जो है मुझे मिल जाए। एक और जो इम्पोर्टेंट शख्सियत है इसके अंदर, जो कि चार आइम्मा यानी चार आइम्मा के जमाने से ये मुअज्जमा खातून, हमारी माए बहनें मुतवज्जो हो जाएं उनके लिए ये मैं स्पेशली, कि एक मुअज्जमा बीबी, एक मुअज्जमा हस्ती खातून है जो चार आइम्मा की जो है जियारत नसीब हुई, जिनको और चार आइम्मा के कार इमामत व विलायत में इनका बहुत बड़ा रोल है, और वही वो मुअज्जमा खातून है जो कि इमाम जमाना की वालिदा के बाद वो दूसरी इंसान है, दूसरी हस्ती है जिन्होंने इमाम जमाना की जियारत की है और आपको अपने गोद में लिया है। वो कौन है? इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहि सलाम की बेटी हकीमा खातून। हकीमा खातून जो है बहुत, ये हकीमा खातून भी गवाह थी, दलील थी, तमाम तशयों के लिए एक राबिता भी थी, वकील समझे जिसको आप, या राबिता कहें जो इमाम में जमाना और क्या कहते हैं मामूमिन के दरमियान, इमाम में हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। वाकयात है लोग मसलन इमाम की शहादत के बाद जो है हकीमा खातून की खिदमत में आते हैं, लोग कहते हैं कि बीबी है तो बताएं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तो शहीद हो गए, उसके बाद इमाम कौन है? ये हकीमा खातून पूरे तरीके से देखें, ये बाज लोगों को विजुअल प्रूफ भी देती थी, यानी इमाम से मुलाकात करवाती थी या दूर से ज्यारत करवाती थी, बाज को जो है सिर्फ अकली दलीलों के जरिए से समझाती थी, बाज को जो कि मोटी अकल के लोग होते थे जिनको दलील नहीं समझने के लिए तैयार नहीं होते, अकल इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होते, गौर व फिक्र करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, उनके लिए जो है कोई और जरिए से, कोई करामत के जरिए, कोई मुइज़े के जरिए, कोई मोटिवेशन बात के जरिए से, कोई इमोशनल उसके जरिए से उनको बताती थी कि भाई वो जो है इमाम ने ये फरमाया इमाम के इश्क में रहो, फलान रहो फलान रहो। एक जो है ये जो है एक और जो है एक, बस इससे एक मैसेज क्या मिलता है असल में, खवातीन नहीं कि खवातीन का कोई रोल नहीं है इस मौजू के ऊपर। हम पहले पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है बहुत सी जगहों में डिस्कस कर चुका हूँ स्पेशली कि खवातीन कार इमामत विलायत में किस तरह का किरदार अदा किया है खवातीन ने, खासकर इतनी हकीमा खातून की करे अब देखें तो ये तो बहरानी और क्राइसिस के टाइम में तो ये तो इमाम के कार इमामत में जो गरीबों और जरूरतमंदों और मिस्किनों की जो हेल्प इमाम करते थे तो ये खवातीन अंजाम देती थी, क्योंकि मर्दों को तो पीछे जासूस पड़ते थे, ये खवातीन जाती थी आराम से इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, पैगाम भी पहुंचाती थी, मसले का हल भी दे दिया, उनसे सवाल भी ले लिया, उनकी मदद भी पहुंचा दी। ये खवातीन उस सर्कल के अंदर अंजाम देती, सामर्रा के अंदर और दीगर जगहों के अंदर। आखिरी बात और आपकी जहमतें तमाम करूंगा, वो इमाम का एक फरमान है, इमाम को फरमान ये है कि देखें इमाम चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स के अंदर क्वालिटी आ जाए, वो क्वालिटी वाइज जो है ना बहुत अच्छे स्टैंडर्ड में पहुंच जाए, बहुत अच्छे एक मकाम में पहुंचे। ये नहीं चाहते हैं कि बस वो कहें हमारे मानने वाले हैं, इसीलिए इमाम फरमाते हैं शिया और मुहिब में फर्क है, ये इमाम फरमाते हैं। देखें कुछ हमारे मुहिबीन हो सकते हैं, शिया नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे शिया हैं वो मुहिबीन तो हैं ही हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन वो शिया भी हैं। तो शिया का मतलब क्या है? मुहब्बीन पता चला शियों से नीचे की एक क्वालिटी है, तो शिया एक सुपर क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, यानी इताअत में उसमें। खुद इमाम, वो जो हदीस मैंने आगाज में बयान फरमाया था, इमाम का फरमान, और भी हैं चार पांच, लेकिन बस एक पे इक्तफा करते हैं और आपकी जहमत तमाम करते हैं, अच्छा खासा वक्त हो गया है। फरमाते हैं, शियातुना हुमुल्लदीना यत्तबिउना आथारना, हमारे शिया वो हैं जो हमें फॉलो करते हैं हर काम के अंदर। वह यतीउना फी जमी अवामिरी व नवाहीना, हमारे हर हुक्म में, चाहे हम अंजाम देने के लिए कहें या अंजाम देने से रोकें, उसमें हमारी बात को मानते हैं, इताअत करते हैं। युतीउना, इताअत करते हैं। वमन खालफना फी कसीरिन मिम्मा फर्रद अल्लाह, लेकिन अगर कोई खुदा की तरफ से फर्ज किए गए, वाजिब किए करार दिए गए चीजों के अंदर अगर वो मुखालिफत करता है हमें, या हमारे हुक्म की मुखालिफत करता है, जो कि दर हकीकत खुदा की तरफ से फर्ज किए गए चीजें हैं, फलैसा मिन शियातिना, वो हमारे शिया नहीं है। हो सकता है मुहिब हों, बहुत सारे मुहिबीन हैं, हमें चाहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ चाहते हैं, हमें मानते हैं, हमारी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं भाई हम इमाम को मानते हैं, लेकिन इमाम की हम नहीं मानते, मानने के इस मामले में हम किसी और की मानते हैं, लेकिन इमाम को हम जरूर मानते हैं, वलीउल्लाह समझते हैं, वली मासूम समझते हैं, वजह तखलीक कायनात समझते हैं, ये सब कुछ ठीक है, नजर नियाज भी करते हैं, लेकिन इमाम की हम मानेंगे नहीं, तो वो शिया नहीं है, मुहिबीन की कैटेगरी में जा सकते हैं। परवरदिगार आलम से दस बदुआ होते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे कि हम वाकई सीरत अइमा को समझें और उसे अपनाने की कोशिश करें और वक्त के तकाजों के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करें। परवरदिगार आलम से दस बदुआ है कि बाबुल इल्म सोसाइटी, यज़ाखाने जहरा और जितने भी हाजरीन व हाजरात, जुमला मोमिनीन व मोमिनात यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बिहक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सबकी तौफीकात खैर में इजाफा करे, सबकी हाजात को अपनी दरगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और मजीद जो है मारिफत की जो है तौफीक इनायत करे।